खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम कल खुदा के कलाम में से सीख रहे थे कि खुदा का बंदा पालूस रसूल तमोथियस अपने रूहानी फर्जंद को कहता है कि जितने लोग मसीह के लिए दयानतदारी की दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब दुखों और तकलीफ़ों का सामना करेंगे। और हमने फिर सीखा था कि जिस तरह हम पिछले दिनों से इस मज़मून पर सीख रहे हैं कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। हमने बेफायदा बातों पर गौर की जिसमें बहुत सी इंसानी रस्में इंसानी रिवाज जैसे यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों से कहा था कि तुम होठों से मेरी ताज़ीम करते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं, और यसाया नबी ने तुम्हारी बाबत क्या खूब कहा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा की रवायत को छोड़कर अपनी रवायत को कायम करते हो। सो आज इंसानी बहुत सी रवायतें हैं जिस पर हमने गौर की थी जो हमारी भलाई का बायस नहीं है, जिनसे हमें कुछ फायदा नहीं है। और कल हमने सीखा था कि कौन सी बातें हैं जो हमारी मसीही जिंदगी में फायदा की हैं, जिसमें हमने देखा था दूसरा तमोथियस 3 बाप उसकी 12 आयत से 17वीं आयत तक, जो नहीं आ सके थे उनकी याद दहानी के लिए, जो मसीह के लिए दुख उठाएंगे वो मसीह के लिए जिंदगी गुजारेंगे वो दुख उठाएंगे, उनको दुख और मुसीबतों का सामना होगा। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से वाज़िया कह दिया था तुम इस दुनिया के नहीं, अगर इस दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे मोहब्बत रखती, उन्होंने मुझसे नफरत की है तुमसे भी नफरत करेंगे। और हम बहुत दफा जब खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद को मनाते हैं तो वहां एक गीत गाया जाता है उस दौर में उस माह में, जब हरे दरख के साथ ऐसा किया गया तो सूखे दरख के साथ क्यों ना किया जाएगा, ऐ यरूशलम की बेटियों मेरे लिए ना रो। सो हमने सीखा था ये, और हमने सीखा था कि जो लोग बुरे हैं वो बुराई की तरफ बढ़ते जाएंगे, नाजस लोग नाजस होते जाएंगे, मुकाशवा 22 बाप उसकी 11वीं 10वीं आयत के मुताबिक, जो पाक हैं वो पाकीजगी की तरफ जाते रहेंगे, जो रासबाज हैं वो रास्ती में बढ़ते जाएंगे। सो पालूस रसूल ने सिखाया था कि पालूस कहता है तमोथियस को कि उन बातों को उन नविश्तों को जो तूने बचपन से सीखे, और इस बात पर गौर की थी हम बहुत दफा माएं अपने बच्चों को लोरियां देती अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बाबा कनक ले आएगा, नहीं, इन लोरियों की बजाय यहूदी माओं की तरह अगर हमें किसी की नकल करनी है तो यहूदी रिवाज में इस बात को याद करने की जरूरत है कि मूसा नबी ने अपने लोगों से कहा था खुदावन खुदा फरमाता है कि तुम मेरे कलाम को अपनी औलाद और आने वाली नस्ल को याद दिलाना, और हमने देखा था कि किस तरह वो उनको याद दिलाते थे कि खुदावन तुम्हारा खुदा इसराइल का खुदा जिसने आसमान खोलकर बटेरे जिसने जमीन से मन पैदा किया जिसने जमीन की चट्टानों में से पानी मुहैया किया और जिसने फाराउन के घराने से तुमको गुलामी से निकाल कर आजादी बख्शी, इब्राहिम इसहाक यकूब का खुदा जो जिंदा खुदा है। अगर आज हम अपने बच्चों को लोरियां देते हैं तो अल्लड़ बल्लड़ बावेदा या फिर दूसरे जो बातें हैं उन्हें छोड़कर खुदा के कलाम को, चिराग है तेरे मेरे पैरां ले खुदावंदा कलाम। सो आज हम मसीही जिंदगी में उन बेफायदा बातों पर नहीं बल्कि फायदा की बातों पर गौर करेंगे। सो आज हम देखेंगे कि खुदा से दुरावें हम हिम्मत ना हारें। मेरे साथ निकालें लूका की इंजील उसका 18वां बाप। 18वें बाप में हमें एक बेवा और बे इंसाफ काजी का जिक्र मिलता है, और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आए देखें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से क्या कहा। 18वां बाप उसकी 1 आयत, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी, मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, पस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब की रहनमाई हो। हमने कल देखा था खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आज हम गौर करेंगे खुदा से दुआ में हिम्मत ना हारो। इस बेवा की तरह बहुत दफा ये कहानी पढ़ी जाती है, लेकिन बहुत दफा इस पर हम और बहुत दफा शागिर्दों की जिंदगी में देखते हैं अमली बात नजर नहीं आती। जैसे शागिर्द खून और गोश्त रखते थे, वैसे हम भी खून और गोश्त के क्या हैं? बंदे और बंदियां हैं। सो बहुत दफा हम दुआ करते हैं लेकिन अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। सो खुदावन यीशु मसीह तमसील से ये बात उनको याद दिलाना चाहते हैं, मेरे शागिर्दो के हिम्मत दुआ में ना हारो। जब हम पुराने अहदनामा को यहूदी तरीकाकार को देखते हैं, तो यहूदी तरीकाकार जो खुदा के प्यारे खुदा से मोहब्बत करते थे, उनका दुआ का तरीकाकार हमें बहुत आला तरीके से नजर आता है। बहुत दफा हम जब दुआ करते हैं हम दुरुस्त तरीके से दुआ नहीं करते। मूसा नबी, दाऊद नबी और बहुत से नबियों की ये खास अल्खास सिफ्त है कि जब कभी वो खुदा की हजूरी में मांगते थे, वो वाजिया तौर पर मांगते थे। हम बहुत दफा दुआ करने में हिचकिचाते हैं। बाइबल मुकद्दस में जहां कहीं भी लिखा गया है कि उसने दुआ की किस मकसद के लिए, किस वजह के लिए, किस बीमारी के लिए, तो वाजिया तौर पर हमारे सामने उसे बयान किया गया है। इसलिए जब कभी दुआ करें, पहली बात दुआ में हिम्मत ना हारें, दूसरी बात जब कभी हम दुआ करें तो वाजिया तौर पर करें। पालूस रसूल ने क्रंथस की कलीसिया में यह मिसाल दी थी कि बांसुरी से आवाज जब निकलती है तो सुनने वालों को सुरूर मिलता है, और इसी तरह जब तरहाई बजती है तो तरहाई की आवाज से पता चल जाता है कि जंग शुरू हो गई है। तरहाई उस दौर में एक ऐसा क्या कहते थे जरिया था जिसे बाजा कह सकते हैं, कि जो बजाया जाता था। जब वो बजाया जाता था तो जो जंगी जवान होते थे उनको पता चल जाता था कि जंग शुरू हो गई है, और जैसे जैसे वो बाजा बजाया जाता था ये उनका तरीकाकार था एक दूसरे से हजारों 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 जंगी फौजों के दरमियान एक दूसरे से क्या करना, राता करने का। वो एक दूसरे से इस तरह बात करते थे, जब बाजा बजाया जाता था पाम, हो सकता है इसका मतलब कि अब जंग शुरू है, पाम पाम पाम, दूसरा जो प्यादों का क्या है दस्ता है वो आगे बढ़े। सो पालूस रसूल पहला करंथियों उसके जब हम 14वें बाब को देखता है वहां पर इस बात को बयान करता है। वहां पर जो मौजू है वो गैर जबानों का है। वो कहता है लोग गैर जबानों में बोलते हैं लेकिन उनकी समझ किसी को नहीं है, और ना ही बोलने वाला समझ रखता है कि वो क्या बोलता है। लेकिन उसका नतीजा वो क्या निकालता है, जैसे तरहाई बजाई जाती है तो पता चल जाता है। मेरे साथ देखें, पहला करंथियों 14वां बाब। इस बात का दुआया जिंदगी से बहुत गहरा तल्लक है। पहला करंथियों 14वां बाब, जब हम उसकी 7वीं आयत से देखते हैं, यहां पर पौलुस उसूल कलीसिया को हदायत कर रहा है जो लोग उस दौर में नेमतों की, रूहानी बरकात की ख्वाहिश करते थे। पौलुस उसूल सबसे ज्यादा उनको कहता है, हाँ करो, नबूवत करो, इल्मियत का हिकम, इल्मियत का इलम, और फिर मुकाशफा की रूह, और फिर दूसरी बहुत सी बातें। पहला करंथियों 14वां बाप उसकी 7 आयत में पालूस रसूल ये मिसालें देकर कलीसिया को समझाता है। मुकाशफा या इलम या नबूवत या तालीम की बातें कहो, इनसे तुम्हें फायदा होगा। 7वीं आयत में लिखा है, चुनाचे बेजान चीजें भी जिनसे आवाज निकलती है, मिसाल बांसुरी या बरबत, अगर उनकी आवाज में फर्क ना हो तो फूकना या बजाया जाता है। फर्क ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाए। हमें क्यों पहचान होती है तबले की और कांगो की आवाज में, क्योंकि इनकी आवाज में मुख्तलिफ है। पौलुस रसूल यही कहता है, बांसुरी और बरबत में फर्क है, जब वो बजते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा साज बज रहा है। और 8वीं आयत में कहता है, और अगर तरहाई की आवाज साफ ना हो, तरहाई ऐसा एक जरिया था जिसे बाजा कह सकते हैं, शायद आपने फिल्मों में देखा हो, पंजाबी फिल्मों में बाजा नहीं डकार मारते हैं, आ लड़ाई शुरू हो गई। सही दौर का जो तरीकाकार था जंगी, जो जंग लड़ते थे, तरहाई बजाई जाती थी। अगर कहता है कि तरहाई की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी अगर जबान से साफ वाजिया बात ना कहो तो कौन कहे, कौन तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा। बुरे वाला, 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 पखर वाला, पखर वाला, पखर वाला, पखर वाला, इसका कोई मतलब नहीं आपके लिए। अगर आपके सामने मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूं, अगर आपको समझ नहीं तो उसका कोई मकसद नहीं है। तो इब्तदाई कलीसिया में, खासकर करंथस की कलीसिया में, जब लोग दुआ के लिए इकट्ठे होते थे तो वो दर 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 किसी को समझ ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी। और जो उस दौर में जबान ज्यादा बोलता था उसे क्या समझा जाता था, ज्यादा रूहानी, ये बहुत दुआगो बंदा है, दुआगो बंदी है। तो लोगों ने इस बात को क्या बना लिया, अपना फायदा बना लिया, और उनसे उन्हें रूहानी कोई फायदा ना हुआ। आज भी गैर जुबानों बोलने वाले ग्रोह में जब जाते हैं, अगर आप गैर जुबान नहीं बोलते तो आप उनकी नजर में रूहानी नहीं हो। पहली बात, आप रूहानी नहीं। दूसरी बात, आपको नजात नहीं मिली। तीसरी बात, रूहुल कुद्दस आप में नहीं है। चौथी बात, जब तक आप उनकी मानद नहीं बनेंगे आपको नजात नहीं मिलेगी। तो ये सारी क्या हैं, बेफायदा बातें हैं। पालूस रसूल कहता है, तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे अगर समझ नहीं तो। हवा से बातें करने वाले ठहरोगे, दुनिया में ख्वाह कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमायनी ना होगी। बस अगर मैं किसी जुबान के मायनी ना समझूं तो बोलने वाले के नजदीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नजदीक अजनबी ठहरेगा। कैरी जब बोलती है आपको समझ आती है, वो गैर जुबान बोलती है, वो अजनबी जुबान बोलती है, हमारे लिए वो क्या है, अजनबी है। तो गैर जुबान को उस दौर में लोगों ने क्या बना लिया था, रूहानियत का जरिया। पालूस रसूल कहता है 12वीं आयत, पस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफरानी से कलीसिया की तरक्की हो। सब लोग नेहमतों की ख्वाहिश रखते हैं, मुझे शफा की नेहमत मिल जाए और बस मैं बैठा लोगों को ऐसे करूं और लोग फट्टों पर, लोग कंधों में बजें। ये लोगों की आज ख्वाहिश है, मैं जी ऐसे करूं और लोग गिर जाएं। जी मैं सिर्फ जुबान बोलूं बल्कि खिदमत के काम को सरंजाम ना दूं। तो पालूस रसूल कहता है, इसी सबब से जो जुबाना जो बेगाना जुबान में बात करता है वो दुआ करके तर्जमा भी कर सके। अगर कोई दुआ अगर कोई तर्जमा नहीं करता तो फिर उस बात का हमें कोई फायदा नहीं है। दिस इज द ग्रेट डे एंड गॉड हैव गिवन टू यू द ग्रेट ब्लेसिंग एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू रिसीव द ब्लेसिंग। समझ आई मैंने क्या कहा आपको? अब इसका तर्जमा करूंगा। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और खुदा ने आपको बरकत दी है और आप उसकी बरकत के वारिस हैं क्योंकि यीशु पर ईमान लाए हैं। मजा आया कि नहीं जी? सो पालूस रसूल इस नतीजे पर निकलता है, इसलिए अगर मैं किसी बगैना जबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है, मेरी अकल बेकार है। रूह तो दुआ करती है, मेरी अकल बेकार है, बेफायदा है, उसे कुछ समझ नहीं, उसके आगे कुछ मायने नहीं है। 15वीं आयत, बस क्या करना चाहिए? यहां पर वो नतीजा निकालता है सारे बयान देकर, बस क्या करना चाहिए। मेरे साथ सब कहें, मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। सो खुदा की बंदी जब उस बे इंसाफ काजी के सामने गई तो उसने वाजिया तौर पर कहा कि मेरा इंसाफ कर, मुझे मदई से बचा, मुझे मदई से बचा। बहुत दफा हम दुआ करते हैं लेकिन उसे वाजिया तौर पर नहीं करते। बहुत दफा किसी से कहा जाता है जी, बहुत दफा लोग आ कहते पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो। बहन भाई किस मकसद के लिए? ना बस छोट बस दुआ कर दियो। बहन किस मकसद के लिए? साडे घर ली दुआ कर दियो। बहन केड़े मकसद ली? कोई बीमारी या सिर दर्द आ किस मकसद ली? दुआ कर दियो जी। याद रखें खुदा का कलाम, बेशक हम सबसे वाकिफ है, हमारे मांगने से पहले जानता है। ये ऐसी बात है जैसे दुल्हन और दुल्हे का रिश्ता। अगर दुल्हा अपनी बीवी को कहता रहे सारा दिन में, चाह बना दे सुबह नू, चाह बना दे दोपहर नू, चाह बना दे शाम नू, तो ये रिश्ता नहीं। एक तोते वाली कहानी है, मियां मिठू चूरी खानी,
चूरी खानी है,
इतनी बात। खुदा का कलाम ईमानदारों को कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बहुत दफा हम मांगते हैं लेकिन मांगना नहीं आता। इस बेवा की मिसाल, वाजे तौर पर मांगे। मुझे याद है जब मैंने मेरे बहुत से रिश्ते आना शुरू हुए कि ये नौजवान खुदा से मोहब्बत करता है, बेऐब है, किसी पंगे में नहीं है, किसी नशावर चीजों में नहीं है, तो सब ने बहुत से रिश्ते आने शुरू हुए, तो मैंने खुदा से दुआ की, खुदा मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ, मैं खिदमत करना चाहता हूँ। सो मेरी बीवी मैं चाहता हूँ कि ऐसी हो जो तुझसे मोहब्बत मुझसे भी ज़्यादा करती हो, वो बच्चों को तालीम देने के लायक हो, वो अगर मुमकिन है तो किसी दूसरे मुल्क से हो। ये मेरी दुआ थी। उसका कद ऐसा हो, उसके बालों का रंग ऐसा हो और वो तुझसे तेरे कलाम से मोहब्बत करती हो और जहां कहीं मैं खड़ा हूं तेरे मस्बा पर तेरी तालीम देने के लिए वो हिचकिचाहट ना करे। ये ना कहे कि ये तेरी खिदमत है, तू कर, मेरे लिए मेकअप ला, मेरे लिए सुर्खी पाउडर ला, कपड़े ला, रोटी ला, यही मेरे लिए काफी है। मैंने वाजह तौर पर खुदा से ये कहा था कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए और यकीन करें या ना करें, उसने वैसी ही बीवी मुझे दी। कहा कि सात समुंदर पार से खुदावन खुदा, अगर तेरी मर्जी है तो आए, और आई। आज सुबह यही चाहता हूं कि दुआ, खुदा से दुआ में हिम्मत ना हारे। यहूदी लोग जब हम खुदावन के कलाम को देखते हैं, खुदावन खुदा से दुआ करने में हिम्मत नहीं हारते, तो जबूर 5 उसकी 3 आयत को जब देखते हैं, वहां पर लिखा है मैं सुबह सवेरे दुआ करूंगा। जबूर 88 उसकी 13 आयत में लिखा है, वहां पर भी मैं हर सुबह तेरे हजूर झुकूंगा, मेरे गमों को दूर कर। यहूदी रवाज में खुदा का बंदा दाऊद हर सुबह, फिर जबूर 88 उसकी पहली आयत में लिखा है मैं दिन रात, दिन को भी और रात को भी दुआ। फिर जबूर 55 उसकी 17 आयत में लिखा है सुबह शाम और दोपहर को तेरे हजूर फरियाद करता हूं। फरियाद का लफ्ज दुआ करता हूं, गुजारिश करता हूं, मिन्नत करता हूं, मनाजात करता हूं, तेरे हजूर अल्तमास करता हूं, तेरे हजूर मांगता हूं। ये एक लफ्ज के इतने लफ्ज हैं। और आपको दानियल की जिंदगी का वाक्य याद होगा। दानियल दिन में 3 दफा अपने दरीचे खोल के, याद है ना, आसमान के दरीचे खुले, आसमान की खिड़कियां खुली और बारिश बरसी, वो अपने घर के दरीचे खोलकर यरूशलम की तरफ घुटने टेक कर दिन में 3 दफा दुआ करता और शुक्रगुजारी करता था। तो हमें दाऊद नबी सुबह को, शाम को, दोपहर को, दानियल नबी सुबह को, शाम को, दोपहर को दुआ करता था। हमारे लिए क्या हुक्म है? पहला थसलीकियों 5 बाप उसकी 17वीं आयत में लिखा है बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। आपके सामने एक बहन बैठी है जिसके पेट में इतनी बड़ी रसौली थी, बिला नागा दुआ करो, और आज वो जिंदा मौजूदा आपके सामने मौजूद है। खुदा दुआ को सुनता है, बहुत दफा हम खुदा की नहीं सुनते, इसलिए दुआ में हिम्मत ना हारें। पहली बात। दूसरी, जब दुआ करें वाजह तौर पर कहें, शर्माए नहीं। हम बहुत दफा, हमारी मसीही बेटों बेटियों की यह हालत होती है, खुदा यसु मसीह कहता है मेरे साथ रफाकत रखो। दुआ क्या है? रफाकत है, एक दूसरे से बातचीत। खुदा यसु मसीह हमें अपनी मेज पर बिठाकर रफाकत रखता है, और हम कुछ अच्छी नेमत की बजाय कहते हैं नहीं, ओ यसु मसीह जेड़े तेरे पैरां च टुकड़े डिगे ना, ओ सी खाने हैं। यसु मसीह चाहता है कि मेरे साथ मेज पर बैठकर मेरे बेटों और बेटियों, शाही कहनों के फिरका खाओ, रफाकत रखो। दुआ क्या है? गुफ्तगू है खुदा के साथ, यसु मसीह के साथ, पाक रूह के साथ। इसलिए दुआ बहुत अहम है। इसीलिए जल्द, आज बुध बुध ही है जी, आज आज बुध शाम, हम कोशिश करेंगे कि आज से, इस बुध से हम शाम की इबादत को शुरू करें जिसमें मेन मकसद होगा दुआ। अगर हो सके आपको खुदा आपका हौसला बढ़ाए तो रोजा की हालत में भी ठहरें। नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, सैमुएल नबी ने रोजा रखा, दाऊद नबी ने रोजे रखे, मूसा नबी ने रोजे रखे, आस्तर ने रोजा रखा, और बहुत से लोगों ने रोजा रखा और तब्दीली आई। अगर हम तो यहां पर मुसाफिर की तरह सिर्फ चाहते हैं कि जिंदगी बसर हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन अगर चाहते हैं कि तब्दीली आए तो आपकी दुआ से। बाइबल मुकद्दस कहती है कि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी दुआ में, मेरी की दुआ में उतनी ही कुव्वत है। अगर कुव्वत कम पड़ती है तो कब पड़ती है? जब हम ईमान से नहीं करते। तो आज इस बात को अपने साथ लेकर जाएं, बिला नागा दुआ करें। खुदावन मुझे घर चाहिए, उस घर का नक्शा अपने रब खुदावन को बयान करें। जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन को बनाया और इतना कामल और खूबसूरत बनाया, उसे 2000 साल हो गए हैं इस जमीन पर से गए हुए आपके लिए और मेरे लिए आसमान पर घर तैयार करते। 2000 साल वो कामल खुदा कहता है और सब कुछ हो जाता है। जरा सोचें कि 2000 साल में वो कैसा घर तैयार करेगा। जिस चीज की जरूरत है उससे वाजह तौर पर मांगे, ये नहीं यसु मसीह मेरी बेटी मेरे साथ टेबल पर बैठ, नहीं नहीं यसु मैं वो थले जेड़े टुकड़े डिगे उन्हें चो खाना। याद रखें वो हम सब के लिए जो दौलतमंद था हम सब के लिए गरीब बना ताकि हम उसकी गरीबी के बायस दौलतमंद हो जाएं। रूहानी नेमतों को आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप आज का कलाम हम सब के लिए तरबियत नसीहत और खुदावंद उस सुवे की मानद हो जो खुदा खुदा बैल की कमर पर मारा जाता है कि वो और गहरे में उस जुए को और जोर से खींचे उस जुए को। सो खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए उस सुवे की मानद हो ताकि हम तेरे और नज़दीक आए, तेरे और खुदा खुदा पास आए, उस बेवा की तरह हिम्मत ना हारें। यीशु मसीह के नाम में हम सबको बड़ी बरकत दे, ये दुआ मांगते हैं, आमीन।